स्थिति में अत्यंति नीचे गिरते हैं। मार्ग भक्ति मार्ग से त्वयी आप में वक्त विदा आपके चरण कमलों में पूरी तरह से अनुरक्त होने के कारण त्वया आपके द्वारा अभिभूता सारे संकटों से सुरक्षित विचरंती विचरण करते हैं निर्भया निर्भीक होकर विनाय अनेक शत्रु जो भक्ति संप्रदाय का विरोध करने के लिए सात समान रखते हैं। मूर्धतु अपने शिरों पर प्रभो हे प्रभु अनुवाद और तात्पर भक्ति विदान स्वामी श्रील प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद की। हे माधव हे लक्ष्मीपति भगवान यदि आपके प्रेमी भक्तगण कभी भक्ति मार्ग से च्युत होते हैं एक पंखा अंदर आवाज आ रहा है पंखा है पंखा है बंद कर दीजिए पंखा कहां आवाज आ रहा है ठीक है। हे माधव हे लक्ष्मीपति भगवान यदि आपके प्रेमी भक्तगण कभी भक्ति मार्ग से चित्त होते हैं तो वे अभक्तों की तरह नहीं गिरते क्योंकि आप तब भी उनका रक्षा करते हैं। इस तरह वे निर्भय होकर उन विरोधियों के मस्तकों पर विचरण करते हैं और भक्ति में प्रगति करते रहते हैं। तात्पर्य सामान्यतया भक्तों का पतन नहीं होता किंतु यदि परिस्थिति पर ऐसा हो भी जाए तो भगवान उनकी प्रबल अनुरक्ति के कारण सभी परिस्थितियों में उन्हें संरक्षण प्रदान करते हैं। भगवान गिरकर भी इतने प्रबल रहते हैं कि अपने शत्रुओं के मस्तकों पर चल सके। हमने वास्तव में देखा है कि हमारे कृष्ण महानामृत आंदोलन के अनेक विरोधी हैं जो प्रोग्राम जिन्हें हमारे भक्तों के विरुद्ध एक भारी मुकदमा चला रखा था। हमने सोच रखा था कि मुकदमा के तय होने में काफी समय लगेगा किंतु भक्तों की रक्षा भगवान करते हैं अतः हम आशा के विपरीत एक दिन में ही मुकदमा जीत गए भगवान की। इस तरह जो मुकदमा सालों चलने वाला था वह भगवान के संरक्षण के कारण एक ही दिन में तय हो गया क्योंकि भगवत गीता 9:31 में भगवान कहते हैं कौंतेय प्रतिजानहि नमे भक्त्या जी। हे कुंती नंदन तुम निर्भय होकर घोषित कर दो कि मेरा भक्त कभी विरक्त नहीं होता। इतिहास में भक्तों को ऐसे अनेक भक्तों का ऐसे अनेक दृष्टांत हैं यथा चित्रकेतु इंद्रदुम्न तथा महाराज पर जो परिस्थिति पर चित्त हुए किंतु फिर भी उनकी रक्षा। उदाहरण महाराज पर एक हिरण के प्रति अपनी अनुरक्ति के कारण अगले जन्म में हिरण बने क्योंकि मरते समय उन्होंने हिरण का ही चिंतन किया था। यम यम वापी स्मरण भावम त्रियंतन दे करम भगवान की सुरक्षा पाने से हिरण ने भगवान के साथ अपने संबंध को स्मरण रखा, जिनसे अगले जन्म में उसका जन्म एक अच्छे ब्राह्मण परिवार में हुआ और उसने भक्ति संबंध की सुचिरा सुनदा के हैं जो वो व्रत अभी आया थे। इसी तरह चित्रकेतु का पतन हुआ और वो राक्षस वृत्रासु बना, किंतु उसकी भी रक्षा की गई। इस तरह यदि कोई भक्ति योग के मार्ग से नीचे गिरता है तो ही अंतोगत उसकी रक्षा होती है। यदि कोई भक्त दृढ़ रूप से भक्ति योग में स्थित है तो भगवान उसकी सुरक्षा का वचन देते हैं, किंतु यदि परिस्थिति पर भक्त का पतन हो भी जाए तो माधव उनका रक्षा करते हैं। माधव सब सार्थक है, माँ लक्ष्मी सभी ईश्वरों की माता सभी भगवान के साथ रहती है, और यदि भक्त भगवान के संपर्क में रहता है तो भगवान के सारे ईश्वर उनकी सहायता के लिए तैयार रहते हैं। यत्र योगेश्वर जहां भगवान कृष्ण तथा उनका भक्त अर्जुन अर्थात पाप करते हैं वहां विजय ईश्वर और असाधारण शक्ति तथा नैतिकता रहते हैं। ओम अज्ञात विरांधस्य
चार अध्याय है उसको जन्म प्रकरण कहा गया है।
भगवान प्रस्थान किए हैं, इसका प्रमाण इस अध्याय में किया गया है। ब्रह्मादि अस्तय, ब्रह्मादि देवता गण भगवान का प्रार्थना किए हैं।
सिक्योरिटी जरा बाकी खड़े हो, कोई नहीं।
देखो लोग बात कर रहे हैं,
तो आप
किसी प्रकार का भय नहीं है, निर्भय होकर के विचरण करते रहते हैं, कभी गिरते नहीं है और उन्हें कोई दुख नहीं पहुंचाता है। लेकिन कभी गिर भी जाते हैं यदि कभी भ्रम भ्रष्टि मार्ग कोई वक्त सौ जाता, कभी यदि गिर भी जाते हैं तो कृष्ण आप वैसे ही बचा लेते हैं जिस प्रकार से प्यारी मां बचा लेती है। यदि कोई बच्चा चल रहा है और बच्चा अपना हाथ अपने मां के हाथ में देकर के बरसात के दिन में चल रहा है, यदि उसका पैर फिसल जाएगा भी तो चूंकि उसका हाथ कहां पर है, मां के हाथ में है, इसलिए मां उसको तुरंत टांगे गिरने नहीं देगी, हाथ पैर उसका नहीं टूटेगा। तो उसी प्रकार से जो वस्त्र सौहृदा है, जो अपना दिल अपना जीवन मान सके हम यहां के गिरे नहीं होते, बल्कि भगवान उन्हें उठा लेते हैं। भगवान गीता में कहते हैं जोगी भी कहते हैं लोग यदि कोई गिर भी जाता है साधु एवं सौमंतव्य समय साधु एवं सौमंतव्य साधु समझना चाहिए। गिरेगा भी तो भी भगवान की रक्षा में भगवान, हम लोग देखे हैं अपने जीवन में बहुत भक्त लोग गिरे हैं, दो चार साल पांच साल दस साल बाहर रहे, लेकिन बाद में जो आते हैं संसार के सुख को भोग करके इसको सुख समझते थे आते हैं तो बड़े अच्छे भगवान बड़े प्रेम से भगवान नाम जप करते हैं इत्यादि इत्यादि। तो भगवान को भगवान समझ करके भगवान सबके दयालु हैं, इसलिए अपने भक्तों के लिए इसलिए भगवान स्तुति जो है उनको वैसा ही करना चाहिए जैसे भगवान उनके अनुसार, अन्यथा नहीं, अन्यथा अनुचित होता है। कोई भगवान कहे कि आप बिना आँख के हो, बिना कान के हो, बिना नाक के हो, आप निर्गुण हो, ये भगवान की स्तुति नहीं है। कोई आपका गुणगान करे, आपका स्तुति करे और कहे आप अंधे हो, आप हरे हो, आप लंगड़े हो, इसे स्तुति कहते हैं क्या? ये स्तुति कहलाता है, मतलब गाली दे रहे हो, एक है ना। तो भगवान का स्तुति भगवान को समझते हुए अन्यथा आत्मा अन्यथा प्रतिपद्यते, यानी आत्मा का स्वरूप कुछ और है और कोई मूर्ख उसे दूसरे प्रकार से समझाने लग जाता है तो पापी नहीं तो क्या है। आत्मा का स्वरूप है कि आत्मा कृष्ण का दास और कोई भी अपने आत्मा और भगवान में कोई अंतर नहीं, हम और आप सब भगवान है, नमो नारायण, सबसे बड़ा सबसे बड़ा। तो भगवान को प्रणाम करना चाहिए भगवान को समझते हुए, इसीलिए देवता लोग भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं भगवान को समझते हुए। भगवान का यथार्थ स्वरूप जब ज्ञान हो जाए उसके लिए साधु का संगति करें, और यदि और कुछ नहीं है तो इतना तो कह सकते हैं कि हे भगवान मैं आपका सेवक और मेरा प्रणाम करेगा और गुरु कुछ न जानता हो। तो देवता लोग जो प्रणाम की उसे कृतधि कहा गया है, कृतधि मतलब भगवान के स्वरूप को समझते हुए देवता लोग प्रणाम कर रहे हैं। ये लोग स्थित प्रज्ञ है, इस तरह से भगवान में उनका मति लगा हुआ है और वे कैसे कर रहे हैं, चितांजलि हाथ जोड़कर उपस्थित कर रहे हैं ना, इसलिए हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे हैं, नतमस्तक है नतान और कृतांजलि, नतमस्तक होकर के हाथ जोड़े, स्थान नहीं बिजाए कर पाए, नीचे नहीं आए नहीं तो बच्चे से घबरा गए होते, इसलिए ऊपर से ही प्रणाम कर रहे हैं हाथ जोड़कर कृतांजलि। और जब प्रणाम करें हो सके चाहे आप कृतांजलि करो चाहे नतान करो, दोनों प्रणाम तीन चीज होना जरूरी है, शरीर वाणी और मन, ये तीनों प्रणाम के समय एक समान एक साथ रहना चाहिए। तीनों एक साथ रहेंगे तो वह प्रणाम भगवान स्वीकार करते हैं, अष्टोत्तम तो जो अपशुद्र बोलते हैं वो ऊंचे ऊंच बोलते, इसका मतलब है नहीं भगवान सारे हैं सुन नहीं रहे, भगवान सब सुन रहे हैं लेकिन फिर भी अपने प्यूरिफिकेशन के लिए, अपने शुद्धिकरण के लिए हमें प्रणाम जोर से करना चाहिए। ये महापुरुष का जप करते हैं तो महापुरुष का जप भी अस्तोत्र ऊंचे ही करते हैं, कुछ तौर से अस्तोत्र का पाठ करना चाहिए, गीता का पाठ करें, भागवत का पाठ करें, महामंत्र करें। क्यों होता है, कारण क्या है? कारण यह है कि कोई वस्तु तब याद आती है जब हम सुनते हैं, है ना, जब हम सुनते हैं कुछ तब याद आती है। बच्चे लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ने नहीं जाते हैं, वो सुनने जाते हैं, जब प्रोफेसर से लेक्चर से टीचर से सुनते हैं तब याद आता है। आप लोग यहां सुन रहे हैं, हम लोग सुने हैं, जब सुने हैं तो अब आप बोल सकते हैं, तो सुनने के लिए जोर से बोलना जरूरी है। जब जोर से बोलेंगे तो सुनेंगे, जब सुनेंगे तब याद आएगा, है ना। उसी प्रकार से जो हरे कृष्ण महामंत्र है ये भी सूत्र है, इसीलिए हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कैसे करना चाहिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम, इतना जोर से बोलो कि बात कर रहे हैं और उसमें उधर क्या हो रहा है, अभी हम लोग सोच रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। जब जोर से महामंत्र का उच्चारण करें, कितने पाखंडी लोग आते हैं, नहीं नहीं मनता जब करना चाहिए, मन में ही जब करो, प्रभु जी कहते तुम लोग बोलो तो मन में ही खा, कब से मुंह से नहीं खाएंगे मन से खा, ये पाखंड है मनता, पता नहीं मन में जब कर रहे हैं कि किसी और चीज का स्मरण कर रहे हैं। तो जब करें जब भी अस्तोत्र का पाठ करें, जब भी भगवान को प्रणाम करें, जब भी तो उच्च स्वर से, लेकिन इतना भी उच्च नहीं कि दूसरे को डिस्टर्ब करे। ये अपना समझना कि मैं तो अभी अपन सोच रहा कल से बस मन में जब कर रहे हैं सब भक्तों जब कर अरे अरे कृष्ण अरे 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 ऐसे ही मतलब दर्द करो, इतना उच्च स्वर से करो ताकि तुम अस्तोत्र ऊंचे ही कर्तव्यम सभी प्राणी का जागरण भवे थी स्वयं का अंत भयम सत्य न अस्थि गति। तो ये देवता लोग प्रणाम कर रहे थे, जोर से नहीं कर रहे थे, नहीं तो उनको भय कहीं कम के जो प्रहरी लोग हैं कहीं जब नहीं जाए। सभी सत्य बात यही है, प्रहरी प्रहरी का जो प्रहरी लोग हैं जागरण भगेगी तो ऐसा गया कि संघा से कहीं वो जब न जाए, कम कम भय सबसे भय सत्य नौती दिया, इसलिए उन्हें जोर से नहीं धीरे धीरे ही प्रणाम कर रहे। सब कहे तो अब तो कम इसके लिए वे धीरे धीरे प्रणाम कर रहे थे, जोर से प्रणाम। तो प्रणाम में ये जो बातें हैं वो समझ लेनी चाहिए कि प्रणाम कैसे होने चाहिए। तो प्रणाम होना चाहिए श्रद्धांजलि और हाथ जोड़ करके नताम हो करके घुटना के द्वारा या सत्सांग या अष्टांग, जब भी प्रणाम करें तो मन वाणी और शरीर तीनों लगा होना चाहिए। तीसरा भी प्रणाम करें तो जिस व्यक्ति को प्रणाम कर रहे हैं उसके प्रस्थिति को समझते हुए उसको समझते हुए प्रणाम करें। तो ये प्रणाम की विधियां हैं और देवता लोग ऐसे ही प्रणाम किए थे। और चलिए हम उस अध्याय पर चलते हैं, देवता लोग प्रणाम किए उससे पहले क्या हुआ है उसके ऊपर हम लोग विचार करेंगे। और भगवान के आगे तो ब्रह्मा जी समस्त देवताओं को बदला है। उसके बाद नारद जी जब देवकी का विवाह हो गया और देवकी को बसते हुए ला रहे थे, आकाशवाणी हुई, उस समय जब हंस मार दिया था तो उसी प्रकार से देवकी देवकी को छुड़ा लिए बसदेव जी अपने तर्क के अनुसार। और इस प्रकार से कम उन लोगों को कारागार में इतना से छोड़ दिया था कम कि कोई बात नहीं, बसते जो वचन दे दिए हैं तो जरूर भगवान आगे पालन करेंगे। लेकिन नारद जी जा करके वहां पर गड़बड़ कर दिए। नारद जी ने कहा कंस तो बड़ा कर दे गया, बहुत बड़ा मूर्ख तो है ही लेकिन अभी तो बहुत बड़ा मूर्ख बन गया। कैसे नारद जी? अरे बुजुर्ग नहीं था, तू नहीं जानता है, देवजी को छोड़ दिया। विष्णु बड़ा चलाक है, भगवान बड़े चलाक है, हम कुछ व्यवस्था कर लेंगे। और तू देवकी वसुदेव को पहला नंबर काम करो, जेल में डालो। नहीं सब देखो तो जेल में डाल दिया, तो कहा देवकी वस्तु जेल में डाल दिया, लेकिन और संत आदमी बहुत लोग हैं, ये सब के सब देवता लोग हैं, घूम रहे हैं। तुम्हारा मन पूछा कि आपको कैसे मालूम सब देवता लोग हैं? लो अरे मैं उस सभा में था, मैं नहीं वहां उपस्थित था, ये घर के भेदिया है नारद जी हैं, भगवान का सेवा करने के लिए काम किया। मैं उस सभा में था जब ये बात हो रही थी और भगवान ने कहा समस्त देवताओं को जाओ, तुम लोग भगवान जन्म लो, कोई नंद बाबा जाओ, कौन कौन है ये सब आपके आपके पास भी आने वाले अक्षुग्रह है ना, उसके वगैरह ये सब देवता लोग हैं, मतलब आपके मारने के पीछे लगे हुए। तब कौन सुभा पूछा है काम पूरा हो गया, मैं तुम लोगों का भरण पोषण कर रहा हूं, तुम्हें लाना चाहते हो। तो एक सभा बुलाया और कौन किन लोगों का सभा बुलाया जो उनके पास थे अपूर्ण त्यागे, उन लोगों का सभा नहीं बुलाया, कुछ अपने अनिष्ट लोगों का सभा बुलाया, उन लोगों का यहां पर वर्णन किया गया है। श्री श्री शुक दो भी दैत्य के रूप में था, यह बैल के रूप में था, दिव्य ये भी दैत्य था और यह बाघ के रूप में था। उतना ये राक्षसी थी, एक अपने कौशला का धारण करती थी और रात में जिसको दिखाई नहीं पड़ता क्या बोलते हैं उल्लू, दिन में बगुला और रात केसी, ये भी दैत्य था और यह अश्व रूप में घोड़े के रूप में था और धेनु, धेनु का यह गधा के रूप में था। इसमें से बताया गया जो पांच लोग थे चारू मुस्ती सू सौ और सोकर, ये सब मती नरेश के पांच पुत्र थे। उसी प्रकार से द्विविध जो था वो प्रवर्तन गिरी में निवास करता था और कंस उसको वहां से लाया था, उसको अपना सेवक बनाया था। ऋषि पर्वत पर कैसे आता था, वहां से कीर्ति को प्राप्त करके लाया था। और वैसे ही महेंद्र पर्वत पर जब कंस गया और महेंद्र पर्वत पर अपना ये बाहु लगा करके और रगड़ने लगा, महेंद्र पर्वत कांपने लगा। भगवान परशुराम वहां पर रहते हैं, जब आंख खोले देखे कि कौन ऐसा कर रहा है तो देखे कंस का, तो कंस के प्रभाव से भगवान परशुराम बहुत प्रसन्न हुए और वे पिनाकी नाम का अपना एक पुत्र था वह कंस को दे दिया। अघासुर लंका और इंडिया के बीच में समुद्र के तट पर निवास करता था और बंगाल, बांग्लादेश आज है पूर्व गंगा, वहां का अपना अरिष्टा और आसाम में बहुत असुर लोग रहते थे। बलि महाराज का पूरा खानदान आसाम में था, जिसको प्राग ज्योतिषपुर कहते हैं, वहीं का भूमिपुत्र नरकासुर प्रलंबासुर बाणासुर भौमासुर जंतासुर कृणावर बकासुर भूतना ये सब के सब वहां पर थे। तो इन असुरों को कंस परास्त करके लाया था और रखा था। महाराज जरासंध के सरपिता सब लोगों को बुलाया और सब लोग अपना जान देने के लिए तैयार थे कंस के लिए। और कंस ने कहा कि भाई देखो फ्रेंड इन ए डी फ्रेंड ए मीट फ्रेंड इन डी, मित्र वही है जो संकट में काम आए, अब हमारे प्राण पर संकट आ गया है और सब देवता लोग इसके अध्यक्ष विष्णु हैं, ये सब तुल गए हमको मारने के लिए, मैंने उनका कुछ भी अब तक से गलती नहीं किया है, लेकिन पता नहीं क्यों मारना चाहते हैं। खैर कोई बात नहीं, यदि मारना चाहते हैं तो हम उनसे कौन खड़े हैं, यदि वे शेर है तो हम सब आते हैं, चलो हम लोग भी लड़ाई करेंगे। और यह प्रस्ताव किया गया कि ठीक है कैसे विष्णु आएगा, सामने तो आएगा नहीं, लेकिन सामने तब आएगा जब उसके भक्तों को परेशान किया जाए, जब भक्तों को परेशान किया जाएगा तब वह विष्णु जरूर आएगा। तो इसलिए आप लोगों का काम है आप लोग जाइए और लूटपाट मचा दीजिए। आप लोग देखे होंगे कभी कभी सेना का या कोई आह्वान करता है कि बंद बंद रखना है, तो बंद के समय दुकानदार लोग बंद नहीं क्या करते हैं, लोग दुकान तोड़ देते हैं ना, लूट पाट करते हैं, क्या क्या करते हैं। तो वैसे ही कंस ने कह दिया कि आज के बाद कहो कोई कृष्ण भक्ति नहीं करेगा, कोई हवन तप कुछ भी नहीं करेगा, कोई हरे कृष्ण जप नहीं करेगा, जो करेगा उन लोगों को परेशान। तो इस प्रकार से कुरु पंचाल कैकई चारु विदर्भ विदेश आदि राज्यों में जा जा करके समस्त राजाओं को लोग प्रताड़ित करते हैं। सब लोग अपना अपना राज्य छोड़ करके भाग गए और अन्यत्र जा करके छिप गए। और कुछ लोग थे वे लोग आकाशवाणी पर विश्वास कर करके कि कंस का विनाश जरूर होगा, देवकी का आठवां पुत्र उन्हें जरूर मारेगा। तो इस प्रकार से वे लोग वहीं पर रह करके और कंस के साथ में वैष्णव यानी विष्णु धाम मतलब धाम विष्णु का धाम। भगवान विष्णु किस पर निवास करते हैं, किस पर सोते हैं? देश में। तो सातवां घर था वे कौन थे? देखो गाड़ी तो
माता देवकी से मिले, बसदेव जी से मिले, तो माता देवकी ने कृष्ण को दे
व्यक्ति का आसन पान किए, जब छोड़ दिए करके बाद में छह लोगों ने पान किया तो क्या हो गया? भगवान का प्रसाद हो गया। ब्रह्मा जी नहीं कहा ना ये भगवान का प्रसाद पान करोगे तो तुम लोग का मुक्ति होता है। तो भगवान देवकी का आसन पान किए, उसके बाद में ये लोग सुभाष चंद्र जिनका वर्ण है, बाद में ये लोग आसन पान किए, इस प्रकार से उन सब लोगों का मुक्ति हुआ। तो मैं कह रहा था कि सर्वगर्भ जो है एक असुर थे, देवकी के घर में असुर लोग आए थे। तो असुर लोग क्या करते हैं? भगवद्गीता भगवान कहते हैं वो अशोच्य, वो बड़े अशोच रहते हैं, अपवित्र रहते हैं। जहां रहेंगे वहां भी अपवित्र करेंगे, शराब पिएंगे बोतल वहीं फेंक देंगे, पेशाब पैखाना करेंगे हाथ पर नहीं धोएंगे, बिना हाथ धोए खाना खा लेंगे, सुबह उठते ही खाना शुरू करेंगे। ये असुरों की प्रवृत्ति है। आजकल विदेश में इंडिया यही प्रवृत्ति आ रही है, लोग गाड़ी चलाते हैं और खाते हैं और चाय पीते हैं, ये आपकी प्रवृत्ति नहीं है तो और क्या है? बिना नहाए धोए ये आपकी प्रवृत्ति है। तो असुर लोग आ गए थे देवकी के घर में, गंदा कर दिए थे, और भगवान आने वाले थे तो गर्भ का सफाई करना बहुत जरूरी है। भगवान गंदे जगह पर नहीं रहते, भगवान का प्रणाम सफाई करना बहुत जरूरी है। इसीलिए बलदेव जी आए सफाई करने, उनका काम था, एक काम था सफाई करना। देवकी बहुत प्रसन्न हुई। प्रसन्नता का कारण क्या है देवकी के? भगवान जहां पर भी आ जाते हैं वह वातावरण प्रसन्नता का सुअवसर प्राप्त कर लेता है। जैसे आज जन्माष्टमी, आज भगवान आने वाले हैं, सब लोग उमंग से मंगला सुनिया, कितने लोग आए थे, इस स्वामी स्वरूप क्या क्या प्रभु का नाम आ रहा है, कोई किसी का केयर भी नहीं किया, ना तो कोई मास्क पहनता, इधर कोई मास्क पहनता है, मास्क पहनने पर क्या स्वाम धोने होता है, कितना करते हैं अपने नाक और मुख क्यों परेशान करते हैं। तो लोग बड़े प्रसन्नता के साथ मंगला आरती में आए थे, देरी नहीं आए लेकिन आ जाए थे, क्योंकि आज भगवान आने वाले आविर्भाव किए भगवान। तो भगवान जहां पर आते हैं, भगवान कहां जहां नाम आता है वहां पर आनंद मंगल आ जाता है। तो बलदेव जी देवकी मैया के गर्भ में आए थे, इसलिए मैया देवकी को बहुत हर्ष हुआ। और शोक किस लिए हुआ? शोक किस लिए हुआ कि मैया को भय हो गया कि जब यह बालक जन्म लेगा तो कम इसको भी जरूर मारेगा, छोड़ेगा। और उसके बाद आगे क्या हुआ? भगवान योग माया को बुलाए, और योग माया से भगवान कहते हैं गौक्षम देवी ब्रजम भद्रे
शास्त्रों में कहा गया कि
वहां पर तुम सुखी रहोगे। हे भद्रे, रॉयल से बहुत कल्याण देवी और भद्रे भगवान दो शब्द कहते हैं। देवी मतलब देने वाली बनोगी और भद्रे मतलब कल्याणकारी बनोगी। भविष्य का बात भगवान हमें कह रहे हैं, कहां जाओ गो गो ब्रज में जाओ, जो ब्रज गो को ही अलंकृतम, जहां पर ग्वाल पाल लोग हैं, गौवे हैं, ग्वाली हैं, गो को ही ग्वाल पाल गाय गोपियां जहां पर निवास करती हैं, तुम वहां हो जाओ। तुम्हारा जो माया करती प्रभु आने को मैं करूंगी क्या, मेरा काम क्या है? और भगवान उसका काम बतलाते हैं कि वहां पर जाकर तुम्हें क्या काम करना है। कहते हैं कि वहां पर ब्रज में वसुदेव की एक पत्नी है जिनका नाम है रोहिणी। रोहिणी वसुदेव की भार्या थी नंद गोकुल। नंद गोकुल में आज के दिन वो निवास कर रही है। तुम्हारा जो मैं कहोगे, अरे मैंने सुना कि वसुदेव की बहुत पत्नियां थी, अन्यों का क्या होगा? तो कहते हैं अन्य विग्रह विवरे वसुदेव। अन्य जो स्त्रियां हैं तो उसके भय से अलग अलग जगहों पर निवास। तो जो माया ने कहा प्रभु मेरा वहां पर काम क्या होगा? तब प्रगदाया माया की प्रयोजन, माया को जो माया वहां जाने का प्रयोजन क्या है? वह आठवें श्लोक में कहते हैं भगवान काम बताते हैं। जो माया कहते हैं देव क्या जरे गर्भम से साक्षम धाम मानकम संकृष्ट रोहिणिया उदरे सन्निवेश। तुम जाओ देवक्या जठरे गर्भ, देवकी के जठर में, गर्भ में नहीं कह रहे हैं। गर्भ अलग होता है और जठर अलग होता है। पेट में जठर वह स्थान है जहां पर अग्नि निवास करती है, जिसे जठराग्नि कहते हैं ना, जहां जठराग्नि निवास कहते हैं। कहते हैं भगवान कहते हैं देव क्या जठरे गर्भ, तुम देवकी के जठर में जाओ गर्भ के रूप में। गर्भ मत जाना, यदि जीव यदि गर्भ में जठर में आ जाएगा, छोटा बालक हो उसको आग के अंगोरे पर रखिएगा, मर जाएगा। तो जठर में जाओ जाएगा बालक तो जल्द खत्म हो सकता है, लेकिन बलराम पर उसका असर नहीं पड़ेगा। देव क्या जठरे गर्भ, वहां पर जाओ न कि गर्भ में। भगवान देवकी के हृदय में प्रवेश किए कृष्ण, बलराम जी देवकी के जठर में आए और जो छह गर्भ थे वो देवकी के गर्भ में आए थे। हम सब लोग अपने मां के गर्भ से बाहर निकले हैं, न कि जठर से न कि दिल से, भूल जाओ हम लोग गर्भ से निकले। देव क्या जठरे गर्भ से साक्षम धाम मानकम, देवकी के जठर में निवास कर रहे हैं कौन? जिनका नाम क्या है? शेष। वो कौन है? धाम मानकम मेरे निवास स्थान है, मैं उन पर विश्राम करता हूं, मेरे आसन है। तुम्हारा जो माया करती तो मेरा काम क्या है? सन्निकृष्य सम्यक रूप से अच्छी तरह से भली भांति निकृष्य सम निकाल, यानी देवकी को गर्भ न। अब ये वर्तन तो नहीं कर सकते हैं लेकिन वह ऐसा ही दूर, किंतु ये वर्तन में क्या होता है, बच्चे मर जाते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं तुम्हें वर्तन करना, लेकिन बच्चा मरना नहीं चाहिए, वो मेरा काम है उसको निकालना। और देवकी को इन स्थितियां भी मत देना, देवकी को दर्द नहीं होना चाहिए जब बालक निकले। डॉक्टर को विवर्तन करने के लिए क्या क्या करते हैं? तत सन्निकृत्य ऐसे निकालना कि देवकी को दर्द हो। और क्या करना? रोहिणी उदरे सन्निवेश, देवकी के गर्भ से मेरे अंग, मेरे धाम बलराम को निकाल करके, शेष को निकाल करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित करना पहला काम। दूसरा काम है कि तुम स्वयं जाकर के और यशोदा मैया के गर्भ में स्थापित हो जाना। लेकिन इससे पहले एक बात और है, भगवान यह बात क्यों कहे कि तुम जा करके उस बालक को देवकी के गर्भ से निकाल करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित करना, भगवान ऐसा क्यों कहे? इसलिए कहे कि बलराम जी एक पार्टिकुलर काम के लिए है, अब वो काम हो गया। कहीं बलराम जी जन्म ले लिए होते, मां हो सेकंड के लिए यदि बलराम जी जन्म ले लिए होते तब क्या होता? कंस को बलराम जी को बाद में आता है, सपना देखता है, सपना बचाता है। यदि बलराम जी को मारने आता कंस और जब ही बलराम जी को स्पर्श करता तो क्या कंस जी तो है मर गया, ऊपर चला गया। बलराम जी के स्पर्श मात्र से उसका माता पूरा। जब बलराम जी ही मार देंगे तो फिर मैं क्या करूंगा? तो मैं यही लटक जाऊंगा और मैं कह चुका हूं देवताओं की मैं आऊंगा। इसलिए भगवान ने कहा उसको वहां से तुम अपना, क्योंकि हम मान कर सब काम कर रहे हैं। एक और मान लीजिए, और मान लीजिए यदि कंस बलराम जी को मार देता तो क्या होगा? कि भगवान आने वाले हैं, भगवान मरवा भी सकते थे। यदि मार देता तब क्या होता? तो पृथ्वी शेष नाग पर टिकी हुई है तो प्रलय आ जाता। जब प्रलय आया था तब सब चौक कोई नहीं करता। इसलिए भगवान ने कहा कि तुम दूसरा काम मत करना कि उस देवकी के गर्भ से उनको
बात कर रहे हैं।
तीन कारण था जो भगवान भेजे थे। एक कारण था मोह प्रकट करना, यही शुभ माया। जब भगवान आए थे महामाया के रूप में मथुरा में निवास कर रही थी और गोकुल में जो माया के रूप में निवास कर रही थी। महामाया का काम है भगवान को छिपा देना और जो माया का काम है भगवान को दिखा देना। तो महामाया के रूप में मथुरा में सब लोगों को सुला दिया। सब स्वयंवर में 3 स्वयंवर चले गए भगवान आए तब। और जो माया के रूप में सब लोगों को स्वप्न दिखाया गोकुल में भगवान की पूरे लीलाओं। तो पहला काम यह किया। दूसरा काम मारने का काम कर, यानी मैं आ रहा हूं कम से कम मालूम देना चाहिए तुम्हारे तुम्हें मारने वाला आ गया है तो इंफॉर्मेशन कोई देने वाला चाहिए। और जो देवता लोग दे दिए हैं वो इंफॉर्मेशन ठीक है और तब से कम विश्वास कर रहा है। ये तुम चली जाओगी तो कौन कहेगा और कौन कहां भी है। अरे हम तो जानते हैं कि और मनुष्य ही झूठ बोलते हैं। आजकल देवता भी झूठ बोलना शुरू कर देवताओं ने कहा कि देवकी का आत्मा अगर तुम्हारा काम करेगा तो आत्मा का लड़की होगी, लड़की थोड़ी हमारा काम करेगी। तो कम को भ्रम में रखने का भी काम और जब कंस मारेगा तो तुम दुर्गा का रूप धारण कर करके जब जो बात कहोगी कंस पर पूरा विश्वास करेगा कि कंस जो है मकुर लोग होते हैं वो देवी के पुजारी होते हैं। तो देवी कहती है उस बात को यथावत मानेगा, कंस तुम्हारे बात को यथावत मानेगा इसलिए कोई कष्ट नहीं होगा। और तीसरा काम था कि भैया मैं ब्रज में आ रहा हूं उस समय वहां पर मुझे रहना पड़ेगा तो मैं तो जन्म लूंगा कहां पर मथुरा में। और यदि नंद रानी के हाथ कोई जन्म नहीं लेगा तो तू कहां से आएगा पीने के लिए और मैं गोकुल में जा रहा हूं तुझे मक्खन खाने के लिए। तो पहला तो नंद रानी से पीऊंगा तो ये बच्चा नहीं होगा तो मां के हाथ तू कहां से आएगा। बच्चा होना जरूरी है इसलिए तुम जाओ और जो बच्ची बन जाना वहां जन्म ले लोगी भले बाद में काम करो एक मैं आ जाऊंगा तू कुछ मत पीना मैं दूसरी। तो भगवान ऐसा कर करके जो माया को खींच रहे हैं। जो माया भगवान की अनकंडीशनल सेवा करती है लेकिन फिर भी भगवान जो भगवान का सेवा करने के लिए केवल तत्पर हो जाता है भगवान उसको संसार का सब कल्याण सब स्टोर का खजाना का प्रवाह खोल देते हैं। श्रेय हो जाता है केवल हम संकल्प कर लेंगे कि आज जन्माष्टमी के लिए हम फास्टिंग करेंगे करो हम संकल्प कर लो केवल संकल्प कर लेंगे आज भगवान के नाम जप करेंगे न करो तो भी कल्याण है तो संकल्प कर लेते और करो तो क्या नहीं किया। तो जो माया भगवान के बात को सुनी और सुन करके तथा यथा जैसा कहेंगे वैसा मैं करूंगी। जब ऐसा कह दिया तो भगवान खुश होकर के जो माया को आशीर्वाद दे रहे हैं। देखिए क्या आशीर्वाद दे रहे हैं कहते हैं अतिष्यन्ति मनुष्यत्वं सर्वकामो ईश्वरी भूमो पहाड़ो भी सर्वकामो हे देवी तुम देने वाली बनोगी भूमि में पृथ्वी लोक पर लोग तुम्हारा पूजा करेंगे अच्युत्यंती अर्चना करेंगे मनुष्य मनुष्य लोग स्वाम तुम्हारा सर्व कामों पर ईश्वरी और उनके समस्त कामनाओं को तुम पूरा करोगे। इसीलिए शाक्त और वैष्णव दो होते हैं। प्राय लोग शाक्त होते हैं शक्ति का उपासक होते हैं क्योंकि भगवान ने आशीर्वाद दे दिया था कि जो लोग उपासना तुम्हारा करेंगे उनके कामनाओं को तुम पूरा करोगे। इसलिए बहुत लोग शक्ति का उपासना करते हैं कैसे तुम्हारा पूजा करेंगे धूप और उपहार और भी धूप से अगरबत्ती जला करके जाओ। अशोकम के 11-12 में भगवान नामकरण भी करते हैं, जो जानते थे कि कंस जब मारेगा तो क्या होगा, मारने का प्रयास करेगा, तुम्हारा ये नाम होगा। यहाँ पर सब मिलाकर के 10 नाम से दुर्गा जी को प्रसिद्ध किया गया है। 10 आँख है और सॉरी 8 आँख है, जो माया जब आई थी माया चली तो 8 आँख। तो भी एक आचार्य लोग कहते हैं, भगवान ये कह रहे हैं कि जब तुमको मिलेगा, पहले जब मिलेगा, अरे जब मैं आया था तो 4 आँख से आया था, और मैया जब प्रार्थना की हमसे तो 4 आँख में 2 आँख हो रहा है, यही ना। और मैं आया था तो मेरे हाथ में कुल 4 अस्त्र शस्त्र थे, और जब मैं 4 अस्त्र शस्त्र हाथ छोड़ दिया, 2 हाथ वाला बन गया, तो कोई अस्त्र नहीं था। जब तुम जाओगी, जब कंस तुम्हें मारेगा, तो तुम 2 हाथ से 8 हाथ वाले बन जाओगे, दुगना बन जाओगे। और हमारे शास्त्रों के बल तुम जाओगी, तुम्हारे हाथ लेकिन बाद में तुम्हारे पास अस्त्र प्राप्त हो जाएगा। यही है माया, जन्म के समय कुछ नहीं रहता है, बीच में कुछ दिखाई पड़ता है, क्या बना धन दौलत, और बाद में मरने समय सब कुछ नहीं रहता, ये बीच में दिखाई पड़ता है। भगवान तो यही कहे कि बीच में तुम्हारे पास तुम हाथ हाथ वाले हो जाओ। विरागव स्वामी कहते हैं, भगवान एक तरफ ये कह रहे हैं कि तुम हमसे डबल काम करने वाली हो, अब तुम्हारा मंदिर भी लोग डबल करेंगे। आज इंडिया में देखा जाए, वैष्णव और शास्त्रों का अनुपात किया जाए, सबसे ज्यादा कौन है, शास्त्र है ना, शक्ति का पूजा करने वाले। मैं देखता हूं कि हरे कृष्ण वाले भगत भी कभी कभी शक्ति का पूजा करते हैं। मैं कुछ कम्युनिकेशन भक्तों घर में देखा, राधा कृष्ण का ही फोटो है, दुर्गा जी का फोटो है, आसक्ति लगी हुई। मैं देखता हूं शिवरात्रि के दिन सब लाइन लगा देते हैं शक्ति का पूजा करते हैं। जब कृष्ण का पूजा करना है तो कृष्ण का पूजा करना, धोबी का कुत्ता ना घर का ना काट का, कहीं का नहीं लगा, एक जगह रहो, दोनों जगह मत, दो नाव पर मत करो, एक नाव पर। तो भगवान कहते हैं तुम डबल काम करने वाली होगी, मैं तो केवल 4 हाथ से आया था, तुम 8 हाथ वाली हो जाओगी, डबल काम करो, तुम्हारा डबल पूजा होगा। उसका नाम दिए, कहा निवास करेंगे, दुर्गा, दुर्गा जी काशी में निवास करते हैं, उनका मंदिर है दुर्गा, भद्रकाली एक अवंतिका उज्जैन में निवास करते हैं, विजया उत्कल उड़ीसा में, वैष्णवी कोल्हापुर में, चंडिका कामरूप से आसाम में है, माया और शारदा उत्तर प्रदेश में है, एक विंध्याचल में है, अंबिका अंबिका मध्य प्रदेश में है, कन्या कन्याकुमारी, और माधवी महालक्ष्मी मुंबई में है, यहाँ भी है कृष्ण की एक माँ। इस प्रकार से तुम वहां पर निवास करोगी, ये तुम्हारा नाम रहेगा, लेकिन लेकिन तुम्हें एक काम करना है। तो इस प्रकार से जो माया आकर के यह सारा काम किया, और उसके बाद भगवान जगत का कल्याण करने के लिए, जगत हम ततो जगत मंगल अस्य आंत समाहित पुरस्तेन देव कीर्दा सर्वामकामोतम भूतम काता यतामं तत्काम यतामं नगरम महापुत। ओ तेरी बात ततो जगत मंगल ब्रह्मांड के समस्त जीवों के मंगल करने के लिए भगवान अच्युत अपने अंशों के साथ में, समस्त ईश्वरों के साथ में, सूरत तेन समातम वसुदेव जी के मन में आए। प्रभुपद वर्ण में कहते हैं, तत्पश्चात परम तेजस्वी संपूर्ण जगत के लिए सर्व मंगलमय भगवान अपने अंशों समेत वसुदेव के मन से देवकी के मन में स्थानांतरित कर दिए गए। इस तरह वसुदेव से दीक्षा प्राप्त कर करने से देवकी सबों का आदि चेतना समस्त कारणों के कारण भगवान कृष्ण को अपने अंतःकरण में गंगा की प्रकार के भगवान जब देवकी माता के पास आए, उनके दिल में आए, सादेव की सर्वज वंदिवा
जब कंस देवी को देखने के लिए आया, उनका ही वर्णन
वन चला गया तब देवता को भगवान का प्रार्थना करना शुरू किए। तो श्लोक संख्या 26 से लेकर के श्लोक संख्या 42 तक देवताओं का प्रार्थना है। अब आपको बताएं, सुनना चाहेंगे तो मैं सुनाऊंगा और मैं जब बंद करूंगा कुछ सुन लीजिए थोड़ा ये, क्योंकि दिन भर फास्टिंग करना है। मैं बोल रहा हूं तो सुन ही रहे हो ना, बैटरी हमारी खत्म हो रही है, आप लोगों की रिचार्ज हो रही है। ये भी ठीक बोल रहे हैं कि जब बैटरी को चालू हो तो चार्ज हो जाता है, गर्म नहीं होता है। बैटरी को यूज नहीं करो तो खत्म हो जाएगा। आप लोग चार्ज रखो, घूमते रहो, मैं बोल दूंगा, ठीक है ना। सत्यम भगवान से आप प्यार हो जाए, भगवान को हम देखें, सब चले जाओ, सब तो कैसे लगते हैं आप के लगते, लेकिन कितना फिर लगता है भगवान से प्यार क्या लगता है। भगवान के साथ में जिसका संबंध हो जाता है वो भी अच्छा लगने लगता है। पृथ्वी चले श्रवण भगवान का सिद्धि माने वो माला बना दिया गया और माला कितना अच्छा लगता है, भगवान को वस्त्र बना दिया गया भगवान कितने अच्छे लगते। उसी प्रकार से भक्त बन गया वो भक्त भी अच्छे लगने लगते हैं क्योंकि भगवान उनका सबसे अच्छे सत्य हो पृथ्व चले श्रवण सब क्या इसलिए सब क्या भगवान से जो भी वस्तु संबंधित है वो सत्य है, ऐसे सतपुरुष को हम लोग शरण मान सकते हैं। फिर इस प्रकार से पूरे सृष्टि का यहां पर देवता लोग ग्रहण करते हैं और सृष्टि का ग्रहण करने के बाद सबसे ऐसे ही मूर्ख लोग हैं जिनका गाली दे रहे हैं, उन लोगों को जो भजन नहीं करते, कहते एक अंग जो भजन नहीं करते हैं, कहते स्वयं समूर्ति भूतरम धुमंतम भवावरम भीम मस्तम भव पदांतो जो पुरुष आवकते विधाय जाता तद अनुग्रह भवान। हे भगवान, जिसके ऊपर आपका अनुग्रह हो जाता है, जिसके ऊपर आपका कृपा हो जाता है, आपकी कृपा से तीन निधाय तीन वैष्णव निधाय छोड़ करके यानी वैष्णव का सॉरी वैकुंठ आपको छोड़ करके अन्य कुछ नहीं जाते हैं वे वैष्णव का जिन पर आपकी कृपा हो गई है, लेकिन जिन पर आपकी कृपा नहीं हुई है वे लोग संसार में दुख के समुद्र में गोता लगाते रहते हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जो भजन नहीं करते हैं लेकिन समझते हैं कि मैं भजन करता हूं, वैसे भी लोग हैं भजन नहीं करते हैं लेकिन समझते हैं भगवान इनने और विमुक्त विमुक्त का वो भजन नहीं करते हैं समझते में मुक्त हो जाता मानते हैं, खड़ेसरी बाबा हो जाते हैं, मौनी बाबा हो जाते हैं, क्या क्या होता क्या हो इलाहाबाद कुंभ मेला में कितने बाबा मिलेंगे, ऐसे लोग कमी नहीं है। ये अपने को मुक्त मानते हैं इनने और विंदा अन्य लोग हे कमल नयन जिनसे आपका संबंध नहीं है और झूठे मूठे अपने को विमुक्त मानते हैं मुक्त मान स्वयं वैसे मूर्ख लोग असत भवा विभिन्न प्रकार का इच्छा करते हुए धन का इच्छा करते हुए नाम का इच्छा करते हुए भोग रखते हैं। एक बार मैं वृंदावन का प्रसन्न था तो एक बार वहां पर एक बात चल गया था कि एक बाबा है वो पृथ्वी के नीचे रहते हैं, पृथ्वी के नीचे जाते हैं वो खाते पीते कुछ नहीं, महीनों महीने अंदर रहते हैं वो हवा में रहे खाते नहीं पीते, तो बहुत भीड़ लगने लगी बाबा को देखने के लिए, बहुत भीड़ लगने लगी। तो ये मीडिया वाले जो है बड़े चला सोचे कारण जरूर होगा भाई बिना खाए पिए कैसे बाबा रहते हैं थोड़ा जानना चाहिए। जब पता लगाने लगे तो पता चला कि एक सुरंग बना हुआ था तब ऐसे लोग अविशुद्ध हो गए, इनकी बुद्धि शुद्ध नहीं है। किस लिए कहा, जिसकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी वो मंगला में सोएगा नहीं, दौड़कर मंगला में आएगा। लेकिन शुद्ध बुद्धि का यही पहचान है भगवान में अनुराग उत्पन्न होना, भगवान में प्रेम उत्पन्न होना, न कि भगवान में शुद्ध हो जाए विमुक्त मार्ग भगवान। और ऐसे लोग जो विमुक्त मानना है, अशुद्ध बुद्धि वाले हैं, बेटा यदि गिरे के ऊपर से तो हड्डी भी नहीं बचेगा, हड्डी कमली चौक हो जाएगा। आरु चक्र से अपरम पदम यदि पदम तो अनाशुष्म अंग्री, हे भगवान आपका स्मरण ग्रहण नहीं किए यदि गिर गए, यदि भगवान करेंगे न किए ऐसे गिर गए, यदि पवन तो यदि गिर गए तो हड्डी का मृत्यु हो गया, कुछ भी नहीं होगा। हम लोग देखें जो अपने को या अशुद्ध बुद्धि वाले शिक्षा लेने के बाद कहते हैं हम विमुक्त हो गए, मंगला आरती आने की जरूरत नहीं है, प्रवचन सुनने की जरूरत है, नाम चर्चा प्रवचन की जरूरत ना, हम ज्ञान किया जाए कुछ दिन के बाद चले ऐसे ही आते पता नहीं चलता। पहले हम लोग कान में ब्लूप हो गया, कान में ब्लूप हो गया, अब याद कर नहीं करते कहते भजन करते हैं जो शुद्ध बुद्धि वाले हैं। तथा भगवान के हो गए हैं तो ये देवता लोग जानते हैं बापू इतने के यथावत प्रार्थना करते हैं, भगवान का एक गुण है। इसीलिए तुम्हें एक भक्ति और कुछ आ नहीं है, भक्ति आप है बुद्धि उन्होंने चाहे घोषणा कर दो कि मेरे भक्तों का बिना भगवान तो आज जन्माष्टमी का दिन है। हम लोगों को संकल्प लेना चाहिए डेली भगवान से प्रार्थना करनी है, भगवान मैं गिरूं नहीं किसी प्रकार से पवित्र, मैं जानता हूं कि पवित्र होने पर भी आप अपने आश्रम में हमें रखेंगे भले कोई रखे ना रहे, लेकिन वो दिन आए ही मैं गिरूं मुझे कोई अभिमान न हो, मैं अपने को श्रेष्ठ न मानने लगूं और शुद्ध बुद्धि न हो जाए, मेरी बुद्धि भ्रष्ट न हो जाए, अपने मन मुक्त न मान बल्कि सही आपके भक्तों के वो भी भक्त तत्वों में दाता हूँ दाता हूँ मैं भक्तों के चरणों का दिवस बना रहा। आज के इस शुभ मंगलमय दिवस पर सबके लिए यही कामनाएं हैं और सब लोग भगवान सिंह के लिए प्रार्थना करें कि सब लोग प्रसन्न चित रहें, कैसे सहज मध्य अपने मन को बुद्धि को दिल को भगवान और कलयुग में भगवान को देने का सरल तरीका है वह है उनका नाम लेकर हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 धन्यवाद। हरे कृष्ण ठीक है।